शस्त्र शुभ वस्त्र करे शुभ पौरे पुत्र गणेश ढूंढाड़ो बीड़गंज नो समरू से प्रथमे प्रथमे खंभे धरो फेस आखे आंधी में पीतांबरो वेश धरी रमे कृष्ण कन्हैयो बाजे झांझ ने फकवाज त्रा 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 बंसी ने नांदे नाचे नंद छयो ए के रंगलो के रंगलो जाम्यो कालिंदरी ने घाट छो गाड़ा तारा होरे छबीला तारा होरे रंगीला तारा रंग भेरो जुए तारी वाट रंगलो ए
कुछ नहीं है भाई, कुछ ऐसा ऐसी कुछ बात कहने वाला नहीं।
दादा के भाषण के बाद कृपा करके आप उत्तर मत जाइएगा, क्योंकि तो दादा एक अपील भी करने वाले हैं, मैं भी एक सूचना है।
एकदम उठ के ना जाए,
मैं कुछ धर्म संकट में हूँ, इसलिए हूँ कि यहाँ के सारे भाषण और सारी चर्चाएं सुनने के बाद मैं अपने आप को कुछ निरक्षर अनुभव कर रहा हूँ। कई बातें मैं समझता था कि मैं जानता हूँ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं बहुत थोड़ी बातें जानता हूँ। जितनी चर्चा मैंने सुनी उससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हम लोगों में मतभेद बहुत थोड़ा है। वर्ग वगैरह की परिभाषा बदलती गई है, कुछ ब्रह्म और माया जैसी हो गई, लेकिन एक बात निश्चित है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, थोड़े हों, जिनको इस समाज में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं मालूम है आज की समाज रचना में, और दूसरे ऐसे हैं जिनको इस समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है, आवश्यकता है आकांक्षा जगाने की, आज हमारी वास्तविक जिम्मेवारी है। ये एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, केवल आवश्यकता से क्रांति नहीं होगी, आकांक्षा भी जागृत होनी चाहिए। आकांक्षा क्यों नहीं है? मनोवृत्ति साइकोलॉजी गरीब और अमीर की एक ही है, साइकोलॉजिकली वर्ग नहीं। मैं मोटे तौर पर गरीब अमीर मैं उनको बांट रहा हूं आर्थिक दृष्टि से। अमीर और गरीब की मनोवृत्ति एक ही है, दोनों को वैभव की आकांक्षा है, और वो वैभव भौतिक है, जिसे आप मटेरियल वेलबींग कहते हैं। इसकी आवश्यकता हमारे देश में है, क्योंकि यहाँ दुर्भिक्ष है, गरीबी है, और वो लोग समाज परिवर्तन चाहते हैं। वो समाज परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि उनकी जो आज भौतिक स्थिति है उसमें उन्नति हो। अब इसमें मैं जो कह रहा था ये कह रहा था कि आकांक्षा क्रांति की होनी चाहिए। मनमोहन बाबू ने जो कहा, दूसरों ने भी कहा कि क्रांति की आकांक्षा के साथ इसको कैसे जोड़ें, वो आकांक्षा आज है नहीं। इसलिए नहीं है कि हर गरीब को यह आशा है कि मैं अमीर बन सकता हूँ। किसी ने कहा भी था कि जाति और वर्ग में फर्क है, वो फर्क तो मैं दोहराऊंगा नहीं। उसमें एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि ये अमीर और गरीब कोई शैतान और फरिश्तों की जातियां नहीं। हर अमीर शैतान नहीं है, हर गरीब देवता नहीं है। अगर अमीर शैतान है तो गरीब हैवान है। इनमें से इंसान कोई रह नहीं गया है। हमारी प्रक्रिया हिंसा को अहिंसा को सबको छोड़ दीजिए। बाबूराव ने कहा कि मानवीय होनी चाहिए, तो मानवीय का की जड़ की बात यह है कि उसमें मनुष्य का नाश नहीं होना चाहिए। आखिर हम चाहते क्या हैं? कि मनुष्य को एक दूसरे के नजदीक आने लाने में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करें। उनमें से एक रुकावट संपत्ति और स्वामित्व है, ये दोनों को बांटती हैं। इनको हम दूर करें और इसमें दोनों को बचाएं, जिसमें दोनों नजदीक आए। तो किसी ने वो कहा कि लिक्विडेशन होगा, क्या होगा, इस सब को जाने दीजिए। हम सिर्फ जड़ की बात कभी कभी नरेंद्र कहता है, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं है शायद तो ये जड़ की बात है उसमें कि मनुष्य को हमें बहाल रखना। मैंने इसलिए दोनों की बीमारी माना है, अमीर की बीमारी अमीरी है, गरीब की बीमारी गरीबी है। फर्क इतना है कि गरीब अपनी बीमारी को बीमारी समझता है और अमीर अपनी बीमारी को बीमारी नहीं मानता। इसलिए इसमें से एक बात निकली कि जो क्रांति होगी वो उसके पराक्रम से होनी चाहिए जिसको आवश्यकता है क्रांति, और उसके पराक्रम की मर्यादा यह है कि मनुष्य का नाश नहीं होगा। मनुष्य के नाश से मतलब है वो अपमानित भी नहीं होगा, उसको शारीरिक क्षति भी नहीं पहुंचाई जाएगी और जान भी नहीं ली जाएगी। इसको मैं मनुष्य की हानि मानता हूं, और सबसे बड़ी हानि है अपमानित होना। किसी मनुष्य को हम नीचा नहीं दिखाएंगे अपनी वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में। इसको आप अहिंसा कहें, शांति कहें, चाहे जो कहें, मैं मनुष्यता कहता हूँ। क्योंकि जो दूसरे को नीचे दिखाकर क्रांति करेगा, उसमें मानवीय मूल्यों का विकास कभी नहीं। और हम क्रांति से मानवीय मूल्यों का विकास करना चाहते हैं। एक बात और इसमें जोड़ देना चाहता हूं, और वो ये है कि गरीब में भी ये चेतना जागृत होनी चाहिए कि स्वामित्व और संपत्ति दोनों मानवीय मूल्यों के लिए कलर ब्लाइंड है, बाधक। संपत्ति और स्वामित्व का निराकरण इसलिए करना है कि मानवीय मूल्य जागृत हों। इसलिए जो क्रांति चाहता है, जिसको क्रांति की आवश्यकता है, उसका भी हृदय परिवर्तन होना चाहिए। यह मैं सत्याग्रह की योग्यता मानता हूं, प्रतिकार की योग्यता मानता हूं, आप नाम उसको चाहे जो दीजिए। अगर मैं यह चाहता हूं कि संपत्ति का निराकरण हो, तो मेरे चित्त में इतनी भावना अवश्य होनी चाहिए कि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। और मैंने यह माना है कि मनुष्य का स्वभाव संग्रह नहीं है, मनुष्य का स्वभाव उपभोग है। मनुष्य उपभोग चाहता है, संग्रह नहीं करना चाहता। अब इसको बढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं स्टेटमेंट कर रहा हूं। तो उपभोग सुलभ हो सबके लिए, लेकिन आकांक्षा स्वामित्व की न हो और संपत्ति की न हो। यह हृदय परिवर्तन क्रांतिकारी में कम से कम होना चाहिए। सारे गरीबों में होगा या नहीं, सारे अमीरों में होगा या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जो क्रांतिकारी होंगे, उस क्रांतिकारी के डर में, उस क्रांतिकारी समुदाय में कम से कम ये चेतना होनी चाहिए। या अगर गरीबों में नहीं, मैं इसे रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस कहता हूं। ये रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस जिनको क्रांति की आवश्यकता है उनमें जगाना चाहिए, इतना ही हमारा काम है। कंस्ट्रक्टिव रिवोल्यूशन की बात कही गई, कंस्ट्रक्टिव रिवोल्यूशन ही उसको कहिए। गांधी का विधायक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम, और रोटरी और सवरेंटी ऑफ इंडिया का, या रामकृष्ण मिशन का रचनात्मक कार्यक्रम, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। गांधी ने उसको स्वराज्य की प्राप्ति के साथ जोड़ा था, इसलिए उसमें से गांधी को अपने सिपाही मिले, प्राप्त हुए। ऐसा ही हमारा रचनात्मक कार्यक्रम अगर गरीबों को उनके आज की हालत से कुछ उनकी हालत को सुधारता है, तो इस कॉन्शियसनेस के साथ कि यह समाज परिवर्तन के लिए योग्य बने, अगर ये कॉन्शियसनेस उनमें जागृत नहीं होती है, तो हमारा विधायक कार्यक्रम केवल कल्याणकारी कार्यक्रम है, जो आज हमारी गांधी की सारी संस्थाएं कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसका कुछ समाज में उपयोग ही नहीं है, लेकिन वो क्रांतिकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता। ये कुछ बातें हैं जो मैं समझता हूं कि उसमें आनी चाहिए। अब ये जैसा मैंने शुरू में कहा कि मैं केवल एक इन सारी जो क्या सुविज्ञों की चर्चा थी, उसमें एक अविज्ञ चर्चा भी जोड़ना चाहता था, कुछ ऐसी बातें जिनको मैं मानवीय मूल्य मानता हूं। और मैंने यह माना है कि सारा वेदांत हो या विज्ञान हो या नैतिकता हो, धर्म को मैं अलग कर देता हूं, क्योंकि धर्म ये चीज नहीं मानता है। इन तीनों का लक्ष्य यही, उद्देश्य यही होना चाहिए कि मनुष्य और मनुष्य के बीच जो फासला है वो कम, और इसी को मैं नैतिकता, आध्यात्मिकता सब कुछ मानता हूं। मनुष्यों को जो दूर करता है एक दूसरे से, वो अधर्म है, वो पाप है, वो अनीति है। मनुष्य को जो मनुष्य के नजदीक लाता है वही धर्म है, वही नैतिकता है, वही अध्यात्म है। मैं ये सब क्रांति के संदर्भ में कह रहा हूं, उस संदर्भ में नहीं जो मोक्ष का संदर्भ है या साधना, मोक्ष की साधना है उसका संदर्भ नहीं। स्पिरिचुअलिटी एज ए सोशल वैल्यू, उसका एक सामाजिक मूल्य के स्वरूप में मैं कह रहा हूं। इससे अधिक जो कुछ चाहा गया था, मैं समझता हूं कि यहां सब कुछ कहा गया है, समुद्र से लेकर पहाड़ तक।
तो
मनोरंजन नहीं है और एंटी सोशल नहीं है।
कभी नहीं है तो,
यानी कम से कम मेरी इच्छा मनोरंजन करने की नहीं है और इसलिए एंटी सोशल होने की नहीं है। अगर आप चाहें तो आप तो अपना मनोरंजन न करें, लेकिन मैं कविता सुनाऊंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, वर्ग संघर्ष शब्द इस कविता में कहीं नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि असमानता है और तरह तरह की असमानताएं हैं, लेकिन सबसे आवश्यक असमानता जिसको कम करनी है वो आर्थिक असमानता है। और भी असमानताएं हैं, अलग अलग बुद्धि के स्तर हैं, नैतिक स्तर हैं, चारित्रिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, तमाम स्तर हैं, लेकिन जो आर्थिक स्तर अलग अलग हैं ये कम से कम अलग अलग हों, ये सबसे जरूरी चीज मुझे पहली समाज को और दूसरी असमानताओं को खत्म करने के लिए सबसे पहली इस असमानता को खत्म करना या कम करना, ये सबसे पहली जरूरत मुझको लगती है। ये मैंने इसमें कहा है, क्यों लगती है ये कहा है, और इसके लिए क्या करना है ये मेरे सामने स्पष्ट नहीं है, केवल संकल्प किया है कि इसको खत्म करना है, इससे मैंने समाप्त किया है। बहुत जैसा कहा कि देश बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है, सारे संसार में ये असमानता है। मैंने यहां से शुरू किया है, देश को शुरू किया और संसार को मैंने पुराना शब्द उठाया, संसार सागर, इसको दुस्तर है तरना, हम तरना चाहते हैं या फिर समेट देना चाहते हैं सागर में, अगर तर नहीं सकते तो हाय रे संसार सागर, बन अगर पड़ता तो मैं तुझको बनाता एक कागर, झुलाकर हाथों में अपने, उठाकर कंधों से ऊपर, मैं तुझे दे मारता पल भर नचाकर सख्त भूपर, और पान की सी पीक बन बहती तेरी मौजी अवस्था, बिखर जाती ठीकरे की तरह सब तेरी व्यवस्था, शोर इस दुनिया में मचता मैं खड़ा हंसता के नचता, एक क्षण में सत्य हो जाता सही ढंग से उजागर, हाय रे संसार सागर तू बताता है कि तेरी ये व्यवस्था है सनातन, चले आते हैं सदा से राव रंग करनी महाजन, तू बताता है कि घर में देख लो छोटे बड़े हैं, फूल दुनिया में नरम है मगर पत्थर तो कड़े हैं, कुछ महीसुर चाहिए ही और कुछ चांडाल होंगे, कुछ मरेंगे भूख से कुछ लोग माला माल होंगे, पांच उंगली हाथ की देखो कभी भी थी बराबर, हाय रे संसार सागर, तू जताता पुण्य उनको जो कि तेरे पाप है रे, तू जताता पुण्य उनको जो कि तेरे पाप है रे, और वर उन्हें घोषित किए चलता के जो अभिशाप है रे, और ढाल कहता है उसे तलवार बनकर फंस गई हो और तू उसे भुजपास बतलाता गले को कस गई हो, और जो रोगों में भिद गया है जहर बनकर, धर्म है वो, जो रगों में भिद गया है जहर बनकर, धर्म है वो, और शर्म है जिसको पसीने की, तुम्हारा कर्म है वो, और तू लट्टू है अपनी इस तरह की कीमिया पर। हाय सागर, हाय सोने की किरण से सत्य को ढांका है, हाय सोने की किरण से सत्य को ढांका है तूने, और स्वर्ण लाठी हाथ में लेकर समय हांका है तूने, जा बजा की है तूने स्वर्ण की लिपि से गुलामी, जा बजा की है तूने स्वर्ण की लिपि से गुलामी, तो स्वर्ण महिमा राक्षसी के रोज बहते हुए हामी, अभ्रभेदी हो गया ये स्वर्ण, युग युग के छलों से हिंस पशु स्फीत जैसे, रक्त पीकर निर्बलों से सिसकता पैरों पे तेरे, है पड़ा सारा चराचर, हाय रे संसार सागर, युग भले लग जाएं, तू गागर बनाया जाएगा ही, युग भले लग जाएं, तू गागर बनाया जाएगा ही, और ये त्योहार खटपटकन मनाया जाएगा। चल रही हर घड़ी कोशिश, तू के घट बन भी रहा है, और घट बनते हुए कंधे तलक तन भी रहा है, मैं ना अपने हाथ से तुझको भले ही दचकता हूं, किंतु इसमें लगा हूं बेशक के वो पल पास लग, और नाचता है वो मुहूर्त शीत पर तेरे सरासर, हाय रे संसार सागर, चैत की प्रथमा में आते साल के पहले प्रहर में, डूबता हूं आज रे संसार में तेरे जहर में, हर दिन मेरे लिए नया दिन है वर्ष का, चैत की प्रथमा में आते साल के पहले प्रहर में, डूबता हूं आज रे संसार में तेरे जहर में, आज पानी में लगाकर, आज लहरों में समाकर आग पानी में लगा, आज लहरों में समाकर आग पानी में लगाए, और जिस तरह से तू चला आया अलग उससे चला, तो छंद की लेकर शपथ शपथने मेरे पास, छंद की लेकर शपथ और निर्माण के नव गीत गाकर, मैं बनाने जा रहा हूं आज इसको एक गाकर, अब कैसे बनेगा, आओ इस दलदल में खड़े होके गाऊं, देखो हम भी तो यहाँ गा रहे हैं, गा गा के आसमान सिर पे उठा रहे हैं, फिर तुम ही क्यों नहीं आते, हमारे साथ दलदल में खड़े होके क्यों नहीं गाते। अच्छा हम समझ गए, तुम्हें जनता से प्रेम नहीं है, जनता का दुख दर्द गाना तुम्हारा नेम नहीं है, इसलिए तुम वहां हो, तुम ठीक से नहीं जानते कि तुम कहाँ हो, और फिर वे मुट्ठियां बांधते हैं, और मैं सोचता हूं क्या दलदल जनता है, क्या कवि के दलदल में फंसने से जनता का कुछ बनता है, जनता दलदल में कहाँ है, वो तो जहां चाहिए वहां है, यानी खेत में खलिहान में पहाड़ में बियाबान में, वो दलदल में खड़े होने क्यों जाएगी, और अगर वहां जाएगी तो उसे भरेगी, वो वहां खड़े खड़े किस लिए मरेगी, वो निकम्मी नहीं है, न निकम्मे शब्दकारों में शामिल है, वो निकम्मी नहीं है, न निकम्मे शब्दकारों में शामिल है, वो कमेली है और कामिल है, उसे सिर्फ गालियां बकते रहने का अवकाश नहीं, वो सड़ी लाश नहीं है किसी गए बीते सिद्धांत की, कि पड़ी पड़ी सिर्फ बदबू फेंके, और न वो ऐसी निर्लज्ज है कि किसी की चिता पर अपनी रोटी से।
डिग्निटी इन रिलेशनशिप, इसको अगर सामाजिक प्रतिष्ठा कहते हैं तो उसमें और जो इंडिविजुअल प्रतिष्ठा में कोई फर्क नहीं।
सवाल सामाजिक
प्रतिष्ठा
मान में रहा
है
कि जमींदार के नाते
वो स्टेटस है, उसका रुतबा है,
क्योंकि जब वर्ग संघर्ष में अगर दबाव की बात आती है तो अक्सर उसकी जो सामाजिक इज्जत है उसके बारे में प्रश्न उठाना पड़ता है,
वो उसकी आड़ में, अंग्रेजी में उसको स्टेटस कहेंगे, डिग्निटी ना कही है, इतना ही मैं कहता हूँ। उसकी इज्जत अलग चीज है और समाज में उसका रुतबा।
बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल डिग्निटी एंड सोशल स्टेटस?
सोशल डिग्निटी टुडे डिपेंड्स अपॉन सर्टन सोशल स्टेटस, जैसे वेल्थ है, पावर है, इनकी पूजा आज होती है, ये सोशल डिग्निटी के आधार हैं, इनको तो हम समाप्त करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में डिग्निटी बढ़ती है, वो मैं कह रहा हूँ। जी हाँ, आपने अच्छा सवाल पूछा।
इसको तो आक्षेप हो सकता है ना उनकी, ये किस किस्म की इज्जत है, जय डेटर से
आक्षेप ही नहीं, आक्रमण।
दादा से हमने पहले एक प्रार्थना की थी कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा अपना
पूरा हो जाता है।
ये विषय के सिलसिले में भारत भाई की वो जो दादा ने कहा कंपल्शन और फ्रस्ट्रेशन, क्या कंपल्शन क्वेश्चन से कंपल्शन होता है और थोड़ा प्रेशर से फ्रस्ट्रेशन होता है, जैसा इसमें कभी कभी ऐसी स्थिति आती है अगर आदमी या कोई मित्र वो समझते नहीं और अपनी जगह पर डांटने डांट रहने चाहते हैं, तब वो कंपल्शन की तब कुछ जरूरत आई।
किशोर साहू का उनका
किशोर साहू एक दूसरे सज्जन
रहेंगे।
आपने भी जो उनके प्रश्न के बारे में पूछा
नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं, मैं तो एक एक दो दो वाक्यों में ही जहाँ तक हो सके कहूँगा। तो आपने कहा है कि कभी कंपल्शन की नौबत आ सकती है कि नहीं, अगर उसका बहुत अधिक आग्रह है तो इसमें मुझे इतना ही कहना है कि कंपल्शन का यहाँ मतलब होगा उसको प्रभावित करना, इतना प्रेशर जिससे वो प्रभावित हो, इतना प्रेशर नहीं कि जिससे वो विवश हो, वो विवश होगा तो उसकी शक्ति क्षीण होगी और प्रतिपक्षी की शक्ति अगर क्षीण होती है तो मानवता का मूल्य भी क्षीण होता है।
स्टेट एक्शन से कंपल्शन होगा?
जी हाँ, स्टेट एक्शन की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो रेजिस्टेंस में नहीं आता, हमने तो सत्याग्रही प्रतिकार की बात सोची है। अभी
सारा प्रश्न ये है कि वो कौन सी शक्ति है जिसका खेल होना जरूरी है और जिसका खेल।
हाँ, मैंने कहा कि जितनी उसकी औपचारिक प्रतिष्ठा है जो आज की सामाजिक प्रतिष्ठाओं पर निर्भर है, वो तो क्षीण ही नहीं समाप्त होनी चाहिए, और जिसकी हमारे साथ उसके संबंध के कारण जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा उसकी बढ़ेगी। मानवीय प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रचलित सामाजिक उसका जो रुतबा है, उस प्रतिष्ठा का हमें अंत करना होगा।
क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल अंत तक चलते हैं। नारायण भाई ने जो दादा से विनती की है कि वर्ग और वर्ग संघ, वर्ग विघ्रह और वर्ग संघर्ष के मुद्दे के बारे में दादा अगर व्यापक भूमिका कहना चाहे तो हो सकता है, तभी तो उसमें।
हाँ, तो इसके मामले में मैं शुरू में इतना कह देना चाहता हूँ कि कृपया आप गांधी और मार्क्स दोनों के नामों को न जोड़ें। हमारी जो दृष्टि है वो समन्वयात्मक है, संवादी दृष्टि, व्यावर तक नहीं। इसमें न मार्क्स का निषेध है न गांधी का अनुयायित्व है। हम गांधी की भी सब बात मानने के लिए तैयार नहीं और नहीं होना चाहिए, गांधी ने भी किसी की बात नहीं मानी और विनोबा ने भी नहीं मानी और जेटी भी नहीं मान रहे हैं। इन सब ने हमको आत्म प्रामाण्य सिखाया, नहीं तो हमारी बुद्धि तो किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए गांधी ने वर्ग संघर्ष शब्द का विरोध किया। उसका कारण उसमें जो फलितार्थ थे, इम्प्लीकेशन थे, उसके कारण उस वक्त किया। उन्होंने इंडिपेंडेंस का भी किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हजरत मोहानी ने जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव अहमदाबाद की कांग्रेस में रखा तो गांधी ने कहा, टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज टू डिनाय गॉड। अब ये क्यों कह दिया? इसका कारण हाँ, वो कहे कि कुछ बातें कहते थे और मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ बेसमझ की बातें करने का अधिकार बड़े से बड़ी विभूति पर है, तो वो अधिकार किसी से नहीं छीना जा सकता सिवा कंप्यूटर। इट इज ह्यूमन डिग्निटी टू बिकम आइदर ए जीनियस और ए ल्यूनेट। ये कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो वर्ग संघर्ष का शब्द उन्हें खटका, इसका कारण उस वक्त की परिस्थिति थी। उन्होंने तो टेक्नोलॉजी का भी विरोध किया और वो एडवर्ड कारपेंटर की पुस्तक का बहुत लोगों को उसकी बहुत सिफारिश की। तो गांधी के उस अंश को हमें छोड़ देना चाहिए जैसे उनकी चोटी को हमने छोड़ दिया। गांधी में जितनी ऑर्थोडॉक्सी थी वो हमारी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। गांधी में जितनी क्रांतिकारिता थी वो हमारी है और होनी चाहिए। तो उसमें हम गांधी जहां ठहरा था वहीं मार्क टाइम नहीं करते रहेंगे, उससे आगे जाएंगे। इस दृष्टि से मार्क्स के लिए हमारे मन में कोई एलर्जी नहीं है, बल्कि हम मानते हैं कि मार्क्स, लेनिन और माओ, इन तीनों ने क्रांति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो न पश्चिम के हैं न पूर्व के हैं, उसमें गांधी ने इजाफा किया है, आगे बढ़ा है। इसलिए वर्ग संघर्ष से हमको घबराना नहीं चाहिए। इस शब्द से, उस शब्द की परिभाषा जिसे लॉजिकल डिफिनेशन कहते हैं, जिसमें उसके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकें, ऐसी कोई परिभाषा हो नहीं सकती। जीवन में किसी भी वस्तु की ऐसी परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन डायनेमिक है। उसमें मार्क्स से हमने एक बात सीखी है, ए इज ए एंड नॉट ए एट द सेम टाइम। कोई स्टैटिक ऐसी चीज नहीं है। कम्युनिस्टों की लिखी हुई पुस्तकें कई हैं जिनमें वर्ग की परिभाषाएं अलग अलग हैं। सोशलिस्टों की भी लिखी हुई हैं, लेकिन अब उस सब के सबका विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्ग एक स्थूल रूप में हमारे सामने है और उसका लक्षण मैंने कल एक मोटा सा बतलाया था कि समाज में एक तबका ऐसा है जिसको समाज परिवर्तन की आवश्यकता है। बिना समाज परिवर्तन के इसका स्वार्थ भी पूरा सिद्ध नहीं हो सकता। यह तबका ऐसा है जिसका स्वार्थ समाज परिवर्तन के अनुकूल है, वो स्वार्थ ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो समाज परिवर्तन के अनुकूल है। ऐसे पिछड़े हुए वर्ग हैं, गरीब हैं और बददलित हैं, अछूत हैं, आदिवासी हैं और दरिद्र हैं। ये सारे जो तबके हैं समाज के, इनका स्वार्थ ही आज समाज परिवर्तन के लिए अनुकूल है। ये उसकी मोटी पहचान हो सकती है, इसको इसलिए हमने वर्ग कहा। दूसरा वर्ग ऐसा है जिसको समाज परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं होती, जो आज के समाज में प्रतिष्ठित है, इसलिए समाज परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस नहीं करता और आकांक्षा तो है ही नहीं, जो आज के समाज को बनाए रखना चाहता है। इन दो वर्गों को मैंने कहा है कि ये वर्ग है, और जब जय प्रकाश वर्ग संघर्ष कहता है तो मान लेना चाहिए कि कुछ उसने मार्क्स का भी अंश है और कुछ गांधी का भी अंश है, कुछ विनोबा का भी है और कुछ अपना स्वतंत्र जय प्रकाश भी है। इन सब के संवाद से जय प्रकाश की विभूति सिद्ध हुई है। इसलिए यहां वर्ग शब्द का अर्थ इतना ही है, जिस वर्ग का यानी समाज के जिस तबके का स्वार्थ समाज परिवर्तन के अनुकूल है, उसको हम प्रतिकार के लिए सिद्ध करेंगे। अब तक हमने उसको प्रतिकार के लिए सिद्ध नहीं किया, क्योंकि हमने प्रतिकार की शक्ति को सहयोग की शक्ति से भिन्न माना। इसलिए मैंने आज ये स्पष्टीकरण किया कि प्रतिकार भी, रेजिस्टेंस इज ए पार्ट ऑफ ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ पर्सुएशन। जहां हमारी बुद्धि शक्ति कुंठित हो जाती है और जहां हमारी हृदय की शक्ति भी कम पड़ती है, वहां पर किसी दूसरी शक्ति की आवश्यकता होती है। गांधी ने इसको सोल फोर्स कहा। अब मुझे, मैं अपने बात कह रहा हूं कि मुझे सोल का पता नहीं है, इसलिए मैंने उसको मनोबल कहा और हृदय का बल कहा। ये उस प्रतिकार के पीछे होना चाहिए। इसमें बाबूराव की एक बात मैंने मानी, वो कहता है हम हिंसा के विरुद्ध हैं, और ये सही है। अगर स्वार्थ मेजॉरिटी का है, बहुसंख्या का है, तो हिंसा अनावश्यक है, और अगर अल्पसंख्या का स्वार्थ है तो हिंसा घातक है। इसलिए हिंसा से अब ये समस्या हल नहीं हो सकती, इतना उन्होंने मान लिया है। तो मैंने इसमें इतना ही जोड़ा कि एक भाव रूप अंश इसमें आना चाहिए, प्रतिकार की आवश्यकता है, बगैर प्रतिकार के हृदय परिवर्तन नहीं होगा। हमारी हृदय की यानी प्रेम की और हमारी बुद्धि की भी शक्ति कहीं जाकर ठिठक जाती है, तब दूसरी शक्ति की आवश्यकता। आवश्यकता है। विनोबा के आंदोलन में उसका प्रयोग नहीं हुआ, इसको मैं विनोबा का दोष नहीं मानता हूं। मैं यह मानता हूं कि जिस परिस्थिति में जिस तरह की भूमिका को वो बनाना चाहते थे उसमें वो संभव भी नहीं था और आवश्यक भी नहीं, वांछनीय भी नहीं था। गांधी 1922 यानी बारडोली के बाद जिस भूमिका को बनाना चाहते थे उस भूमिका में विनोबा उस वक्त थे। इसलिए मैंने भी वसंतराव नारदोलकर का विरोध किया था और आचार्य जी ने भी किया था, क्योंकि एक परिस्थिति और काल का कुछ तकाजा होता है। अब हम इस मुकाम पर आ गए हैं जब प्रतिकार आवश्यक हो गया है, वांछनीय हो गया है। ये प्रतिकार किस प्रकार का हो वर्ग संघर्ष में, इतना ही मैंने कहा है। वर्ग की परिभाषा करने की कोशिश नहीं की, जो शब्द जैसे हैं उनको मैंने स्वीकार कर लिया। ज्यादा लंबाना नहीं चाहता, लेकिन एकाध मैं उदाहरण दे देता हूं। राइट, हक और अधिकार शब्द हैं। अब राइट, हक और अधिकार, इन तीनों शब्दों को हमने ड्यूटी के कॉन्ट्रारी शब्द माना, प्रतियोगी शब्द माना, कि ड्यूटी एक तरफ, कर्तव्य एक तरफ और अधिकार दूसरी तरफ। असल में मूल में अधिकार का ये अर्थ था ही नहीं कभी। अधिकार में तो दो चीजें आती हैं, अर्थित्व और योग्यता, हमारी इच्छा हो और योग्यता हो। वैसे ही इंडिपेंडेंस शब्द है, जिसका इंडिपेंडेंस का मतलब होगा अतंत्रता। स्वतंत्रता तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, विधायक है, भावरूप है। तो यहां स्वराज्य आया, उनका उपयोग होता है तो घिस जाते हैं। इन शब्दों में से ये शब्द हैं जो भिज गए हैं, ये प्रतिकार शब्द भी इसी तरह से भिज गया है। प्रतिकार शब्द का अर्थ रेस्पॉन्स ही असल है, प्रतिकृति इतना ही उसका अर्थ है, रेस्पॉन्स रिएक्शन नहीं या रेजिस्टेंस नहीं। मैंने शब्दों के मूल अर्थ को, इसलिए वर्ग शब्द भी इससे आ जाएगा, उसका अर्थ भी हमारे प्रयोग से परिष्कृत होगा। गांधी का सत्याग्रह शब्द में आग्रह है, आग्रह शब्द तो कोई अच्छा नहीं है, जहां आग्रह होगा वहां अबुद्धि होगी, लेकिन आग्रह शब्द भी गांधी ने परिमार्जित कर दिया, अपने प्रयोग से परिष्कृत कर दिया। इस तरह से वर्ग शब्द भी परिष्कृत हो जाएगा और संघर्ष शब्द भी परिष्कृत हो जाएगा। ये भाषा के विकास की प्रक्रिया है। अब इससे अधिक कुछ और आप जानना चाहते हो तो मैं कहूंगा।
गाइडलाइन वो तो हमको पूरा, कम से कम मुझे तो पूरा मानने हैं। पहले जो उन्होंने जिसमें कहा था हमसे व्यक्तिगत चर्चा भी इसके बारे में पूछा काफी, लेकिन ये वर्ग संघर्ष शब्द ये कोई बिल्कुल शास्त्रीय शब्द किसी एक प्रकार से नहीं है, क्या कहेंगे न्यूट्रल चीज नहीं है, ये एक आज फिलोसॉफी का ही ये एक वो है। जैसे सत्याग्रह कहते हैं तो सत्याग्रह यानी गांधीयन सारे मूवमेंट, गांधीयन बैकग्राउंड उसका पीछे से जुड़ा हुआ है, ऐसे वर्ग संघर्ष शब्द के साथ भी वो जुड़ा हुआ है। इसका दूसरा कोई इस प्रकार का वो नहीं है, वही इसका जो शास्त्रीय कम्युनिकेशन जो भी हो प्रैक्टिस उसका ये असर है। अब उसमें मुझे उसमें अब ये समस्या हमारे सामने है कि जयप्रकाश जी के उस उद्देश्य के लिए उसके विचार के अनुसार हम शब्द का उपयोग करना शुरू करेंगे तो हम शुरू करते हैं। तो पहली जो है कल जिसके और रामोजी ने इशारा किया, प्रतिक्रिया जो होती है ये वैसा धन, ये जो सत्याग्रह की जो परंपरा बिताई थी ये अब नाकाम या साबित हुई, इसलिए अब ये नया अनुसार हमको मिला है जिसका नागर है या फिर वापस हम उस पर जो मार्क्सिस्ट सारा जो कॉन्सेप्ट और उसकी फिलोसफी उसका जो कार्य प्रणाली उस पर हम गए, ये एक प्रकार के इंप्रेशन पैदा हुआ। और ये अपने मुझे यहाँ भी उस प्रकार का कुछ झलक देखने को मिला थोड़ा सा, इसीलिए इस चीज को कैसे हम दोनों जिसको हमने जयप्रकाश जी ने जिस मामले में कहा उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका जो शब्द के उपयोग शुरू करेंगे तो उसका कुल मिलाकर के जो प्रतिक्रिया होती है जो अपने आगे विचार को बढ़ाने के बजाय उसको रोकने की उसकी हो जाती है, हमारा दिमाग चला जाता है, उसको कैसे हम टालें परिस्थिति को फेस करें, ये है मेरे सामने असली समस्या इस संगीति की।
ठीक है, आपने जो कहा मैंने निवेदन किया था कि विचार की के विकास की यह प्रक्रिया है, कुछ हमारे भीतर ऐसा छिपा हुआ है, हमारे ही नहीं सारे मनुष्यों के भीतर, कि उनको युद्ध और इश्क की परिभाषा बड़ी प्रिय है।